राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 19 जुलाई 1993 को प्रातः लगभग 5 बजे बीकानेर में हुआ। राम
राम राम राम राम राम राम दूसरी बात आई हो आप
फरमाए हो नाम जप करनो कीर्तन करनो लड़दारी पकड़ है लड़दारी पकड़ छूटे
गा
कल तो उल्टा उसका आपने मंडन किया
उल्टा समझिए कि नाम जप करना पूजा पाठ करना ही लड़ता है बोला कि समझ के छूटे आपने
बिल्कुल ऊंधी बात समझे
महाराज जी
थोड़ा ठहरे ठहरे बात करा ये बात मैं नहीं कही डरता है मैं तो बहुत पुष्ट करी इस बात को सुबह वहां भी कि जड़ता में आप बैठे हो तो जड़ता की सहायता बिना कैसे ऊंचे उठोगे या कही मैं बात अगर भगवान के लिए किया जाए वो जड़ता नहीं है क्रिया जड़ बन रही हो उतनी से जड़ नहीं होना चाहिए ये बात कही मैंने कल आप से समझे कि जड़ता है जी आपके कहने में मेरे कहने में फर्क मालूम देता है नहीं आपको फर्क है मैंने नहीं कहा जड़ता है कुछ भी करोगे कुछ भी करो चाहे समाधि करो जड़ता की सहायता लेनी ही पड़ेगी बिना जड़ता की सहायता के आप कुछ कर नहीं सकते करना न करना दोनों में जड़ता ही सहायता है न करने का विचार भी तो मन बुद्धि का ही है तब तो न करना है न करना है करना भी तत्व नहीं है न करना भी तत्व नहीं है करना जैसे है ऐसे न नहीं दस्य कृतिनार्थ ना कृत्य नहीं है दस्य न सब भगवान कहते हैं करने से कोई प्रयोजन नहीं है न करने से भी कोई प्रयोजन नहीं है और किसी प्राणी के साथ कोई स्वार्थ का संबंध नहीं है तीन बात कही उसने
नहीं
कृतिनार्थ न आकृति नहीं करता नशा से कृष्ण दर्शन व्यवहार से किसी प्राणी के साथ में कुछ भी कोई संबंध नहीं है रहेगा ये बात बताइए तो ये तो आपका प्रश्न था जड़ता का दो मैं तो बात बिल्कुल उल्टी गई आप अपनी बात ही पकड़े हुए अभी करना न करना दोनों से तत्व अलहदा है ऐसे दृष्टि में तो ऐसा दिखता है कि करना तो संसार का है न करना परमात्मा का है जैसे मैंने कहा भाई चेतन क्या है जितनी क्रिया होती है वो चेतन है और क्रिया नहीं होती वो जड़ है और ये बात है नहीं वास्तव में क्रिया है वो भी जड़ है और क्रिया नहीं वो भी जड़ है क्रिया जड़ में ही होती है चेतन में होती नहीं पर लोगों ने समझ लगता है चेतन नाम जिसमें क्रिया हो चले फिरे वो चेतन है और जिसमें क्रिया नहीं है पत्थर पड़ा है वो जड़ है ये बात नहीं है प्रकृति जो क्रियाशील है वो क्रियाशील ही है हरदम ही उसमें दो चीज होती है एक तो क्रिया होती है और एक पदार्थ होते हैं एक खास चीज है ना क्रिया में आसक्ति होनी चाहिए ना पदार्थ में पदार्थ में ये सब पांच भौतिक सृष्टि सब आ जाती है, मनुष्य पशु पक्षी रुपया पैसा हीण चंद्र पूजा सब पशु सब आ जाते हैं। तो पदार्थ है लेकिन क्रिया है, वो क्रिया एक करने से होती है, एक स्वतः होती है। क्रिया दो तरह की है, एक क्रिया स्वतः होती है, एक क्रिया करने में होती है। करने में होती है उसमें कर्तव्य अभिमान होता है, उसमें पाप पुण्य होता है, और होती है क्रिया में ना वो पाप होता है ना पुण्य होता है। जैसे बालक से जवान हो गया तो पाप हो गया क्या पुण्य हो गया, क्रिया तो वही है, नहीं तो बालक से जवान कैसे होता। क्रिया ना बदलना, श्वासों का आना जाना होता है, क्रिया तो होती है, नाड़ियां चलती है, क्रिया होती है, जिसमें ना पाप है ना पुण्य है। तो करते हो वो करने में सावधान चाहिए, ये होने में है, होने में प्रसन्न करने में सावधान, ये दो बात खास है। करने में तो सावधान रहो, होने में प्रसन्न रहो, चाहे सुख आवे चाहे दुख आवे, चाहे अनुकूल आवे चाहे प्रतिकूल आवे, चाहे नफा हो चाहे नुकसान हो, चाहे बुखार आवे चाहे बुखार उतर जाए, ये होना है, करना थोड़ी है। बुखार हम थोड़े करते हैं, और बुखार उतरना भी हम कर दें आदमी आधी थोड़ी बात है, दवाई और दे सकते हैं पर घर उतर आधी बात उतारी है। ये क्रिया होना करना संसार में होता रहता है। देखो वास्तव में साधक में और संसारी में कोई फर्क नहीं है, क्रियाओं के होने करने में केवल उद्देश्य में फर्क है, उसका ध्येय क्या है, लक्ष्य क्या है। लक्ष्य उद्देश्य क्या होता है कि क्या पाना है आपको, क्या लेना है आपको, क्या करना है क्या नहीं करना है, किसके लिए, उद्देश्य की सिद्धि के लिए। तो उद्देश्य की सिद्धि के आधार वो रहने चाहिए परमात्मा, ये कल यहां भी कहा वहां भी कहा था। लक्ष्य चेतन होगा तो क्रिया सब चेतन होगी, चेतन नहीं सब होगी जन्म नहीं होगी, उसका परिणाम चेतन होगा, न करने का भी करने का भी। और उद्देश्य जड़ हो तो न करने करने दोनों जड़ता ही होगी। जो धन के लिए कोई काम करता है, पुत्र के लिए करता है, मान बढ़ाई के लिए करता है, शरीर के आराम के लिए करता है, तो जड़ता ही है, जड़ता ही जड़ता ही उद्देश्य जड़ता ही करना जड़ी उद्देश्य नाश होने उद्देश्य सुख सुविधा से रहे शरीर ठीक रहे ये था ना, ये जड़ का है, ये टिकेगी नहीं मिट जाएगी, न शरीर टिकेगा न निरोगता टिकेगी न सरोगता टिकेगी, ये सब नाश होने। ये क्या करने से मतलब न करने से मतलब, तब तो वो अलग है, दिखता है ऐसा कि वो है, स्थूल दृष्टि से ऐसा दिखता है कि परमात्मा की प्राप्ति होती तो मुक्ति तो होता है, एक तो भगवान के लोक में जाना मुक्ति है, वो परमात्मा में जाना मुक्ति है, तो उसमें मिल जाने में क्रिया नहीं है और उसमें क्रिया है, ऐसा दिखता है नहीं ऐसा। तो बोले जड़ का क्या कर दो, जीव चेतन, जीव क्या चेतन है, शरीर है जीव क्या चेतन है, जीव क्या है चेतन, शरीर है यही है क्या जीव चेतन, अरे क्या चेतन है वो जीव, शरीर ये नाप वगैरह भी दर्शन बोल रहे थे ना, तो भ्रम रह जाए तो बोले पूछे तो पता लगे ना क्या भ्रम है इसमें, कर्ण रहित कर्ण सहित एक तो और कर्ण निरपेक्ष एक सापेक्ष
कर्णातीत कर्णातीत कर्ण निरपेक्ष और कर्ण रहित तीनों में क्या भेद है।
कर्ण रहित तो तत्व है, कर्ण नहीं हुआ कर्ण क्या है, प्रकृति मात्र नहीं है, कर्ता भी नहीं है, कर्म भी नहीं है, कर्ण भी नहीं है, संप्रदान भी नहीं है, अपादान भी नहीं है, अधिकरण भी नहीं है, कोई कारक नहीं है। और करणातीत है, कर्ण शब्द के दो अर्थ होते हैं, करणातीत जो है दो अर्थ आते हैं इसमें, एक तो कर्ण सहित होता है, कर्ण से कर्ण सहित होता है। करणातीत के अर्थ दो होते हैं, एक तो कर्ण सहित और एक कर्ण सहित क्रिया सहित कर्ण सहित, ये कर्ण रहित है। तो कौन सा आप पूछते हैं, कर्ण रहित कर्ण सहित पूछते हैं कि कर्ण सहित पूछते हैं? कर्णातीत वही होता है, कर्ण रहित होता है, वही कर्णातीत है जो कर्ण रहित है।
कर्ण निरपेक्ष साधन होता है,
कर्ण सापेक्ष साधन होता है, कर्ण निरपेक्ष साधन है, कर्ण सापेक्ष साधन है। जिसमें बहुत कर्ण सापेक्ष ही है, शास्त्रों में, संतों की वाणी में, व्याकरण में और शास्त्रों के छह शास्त्रों में जितना वर्णन आता है प्राय कर्ण सापेक्ष का ही वर्णन है। कर्ण निरपेक्ष का वर्णन है वो समझ में नहीं आता, जब तक कर्ण निरपेक्ष कर्ण सापेक्ष तो ठीक नहीं समझता, सब शास्त्रों को कर्ण सापेक्ष ही समझता है, कर्ण सापेक्ष का ही विवेचन होता है, व्याख्यान कर्ण सापेक्ष का ही होता है, उपदेश कर्ण सापेक्ष का ही होता है और अनुष्ठान कर्ण सापेक्ष का ही होता है। इस वक्त मैं कहता हूँ वह बात भाई बढ़ती रहो, कर्ण निरपेक्ष क्या होता है, साधन किया जाए कर्ण निरपेक्ष कैसे होगा, साधन तो कर्ण से ही होगा, साधन शब्द है उस साधन शब्द में नहीं, कर्ण में जुटे ही तो कर्ण का नाम साधन है, राग साध संस्कृत धातु से कर्ण में जुट प्रत्यय होता है तब कर्ण बन जाता है, तो कर्ण नाम कर्ण का ही है, तो कर्ण निष्पेक्ष क्या होगा, तो कर्ण निष्पेक्ष कहते हूँ उसका अर्थ शंका करने वाले वे कर्ण निष्पेक्ष शब्द की ध्यान नहीं देते, वे कर्ण रह भी ध्यान देते हैं। कर्ण निर्देश शब्द का अर्थ मेरे तो कुछ दिनों के बाद फिर समझ में आया कि लोग क्या समझते हैं, वो कर्ण निर्देश कर्ण रहित को ही कहते हैं कर्ण निर्देश, कर्ण निर्देश साधन कैसे हो, कर्ण रहित साधन हो गई कैसे, करना तो कुछ न कुछ क्रिया में ही होगा और करना है, अरे साधन शब्द के भीतर भी कर्ण पड़ा है, कर्ण अर्थ में साधन होता है कर्ण निर्देश, तो कर्ण निरपेक्ष का अर्थ कर्ण रहित मानते हैं, शंका कर दिया तो दूसरी बात है ही नहीं है, है ही नहीं, ये फिर पीछे पता लगा मेरे को, शंका करी क्यों ने तब पता लगा ये क्या समझ रहे हैं, जैसे ये कर्ण कहा निकल गया तो जर है, फिर कल इतनी बात कही दो दिन विवेचन किया उतने पर भी बात वही है अभी पहले वाली, ये साधन किया मिला ज्ञान दिया हरनाल दौड़िया बोला हरण के पीछे दौड़ दे क्या मेरे जंगल में हर के पीछे दौड़े बात हुई, तो जड़ता वर्ता कुछ नहीं है, तत्व हमारे को चिन्मय तत्व को प्राप्त करना है, उसमें बाद प्राया करके स्तरण सापेक्ष का ही वर्ण है, इस वास्ते कर्ण निरपेक्ष है वो समझ में बात नहीं आती है। अभी मैंने कही ये बात भी नहीं आती है समझ में कि आप श्रवण करो, मनन करो, निध्यासन करो, ध्यान करो, समाधि करो, सब में क्रिया है, तो समाधि में क्रिया थोड़ी समझेगा आदमी, क्रिया रही तो मन समाधि होती है, समाधि समाधि में क्रिया रही हो जाता है, वास्तव में समाधि है वो ये जागृत अवस्था है, जागृत अवस्था है ये सूक्ष्म शरीर की है, और सूक्ष्म शरीर का चिंतन है ध्यान सूक्ष्म शरीर का है, और समाधि कारण शरीर की है, और कारण शरीर से रहित होगी समाधि कैसे होगी, समाधि कारण सही तो कारण शरीर की बिना समाधि नहीं होगी। अब बात जल्दी समझ में नहीं आती, मेरे नहीं आई थी, इस बात में कहता हूँ समाधि है वो कान शरीर की है। ये बात मेरी समझ में नहीं आई थी पहले, तो इसे पढ़ने से विचार करने से आई समझ में। जब तक कान शरीर के साथ संबंध रहता है तभी तक समाधि होती है। उस समाधि की दो अवस्था होती है, एक समाधि अवस्था एक विद्युत अवस्था। समाधि होता है व्युत्थान होता है, तो व्युत्थान और समाधि दो होती तब जड़ का संबंध है। जड़ का संबंध रहने पर व्युत्थान नहीं होगा, दूसरी होगी ही नहीं। तो आपके ख्याल में आया कर्ण सापेक्ष कर्ण विशेष कर्ण रहित मानो रहित तत्व तो कर्ण से ही नहीं एक संपूर्ण कारकों से रहित है। एक बड़ी मार्मिक बात है जो आपके समझ में आ रहा है कि नहीं पता नहीं है। ये जो साधन है ना, जो अंतःकरण शुद्ध होने से परमात्मा की प्राप्ति होती है और अंतःकरण अशुद्ध होने से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। तो अशुद्ध से नहीं होती ये तो बात ठीक है, पर अंतःकरण शुद्ध होने से प्राप्ति होती है ये ठीक नहीं बैठती है बात। मैं आप समझने की चेष्टा ही नहीं करते। प्रसिद्ध बात है सब में पढ़े लिखे हम सब में बात है कि अंतरंग शुद्धि नहीं है। इस बात से तुम्हारे समझ में नहीं आई बात, अंतरंग शुद्ध हो समझ जाओगे। इसको ठीक ख्याल में आएगी ना आपकी बात, कारण अंतरकरण शुद्ध होने से परमात्मा प्राप्ति होती है। अभी जो बात करते हैं परमात्मा प्राप्ति नहीं होती इसमें कारण है तुम्हारा अंतरकरण शुद्ध नहीं है। अंतःकरण की शुद्धि से तो वो चीज होगी जो कर्ण के द्वारा कई क्रिया होती है, उस कर्ण शुद्धि से क्रिया होगी अच्छी तरह से। जो क्रिया से अतीत है वहां कर्ण शुद्ध हो जाए अशुद्ध क्या मतलब उसे? और ये बात अभी बातों में कहने में सुनने में भी समझ नहीं आती है ठीक तरह से, कठिन मालूम देता है क्योंकि समझना चाहते ही नहीं लोग। ये तो कठिन कुछ नहीं है, मैं बातों से कठिन मानते ही नहीं, स्थिति में कठिन मानता हूँ। बातों में समझना बहुत सुगम है, छह सालों की बात समझ लो सीधी सीधी, एक एक दुबे दुबे चीज कर लो याद, ऐसी बात है। जैसे एक एक दुबे दुबे चीज शास्त्र की बात है, चाहे न्याय पढ़ो सांख्य पढ़ो वेदांत पढ़ो, तो अंतःकरण की शुद्धि अशुद्धि में तो ये कह सकते हो कि अंतःकरण शुद्ध है उसका वो विचार उसमें परमात्मा की प्राप्ति की तरफ लगता ही नहीं, क्यों तो कह सकते हो। और कर्ण की शुद्धि होने से जैसे कलम बढ़िया हो तो दिखना बढ़िया होगा, हमारा दिखना बढ़िया कब होगा? आंख ठीक हो तो दिखना बढ़िया होगा, ऐसे इंद्रिया ठीक होगी तो इंद्रियों का ज्ञान अच्छा होगा, तो ये कर्ण साध्य है। कर्ण शुद्ध होगा शुद्ध होगा, पर परमात्म तत्व की प्राप्ति ये देखो आपको मैं नहीं कहता हूँ, मैं मेरी बीती हुई बात बताता हूँ। बरसों तक मैं समझा नहीं इस बात को, और यही मानता है कर्ण शुद्ध अंतःकरण शुद्धि होने प्राप्ति होगी, अंतःकरण शुद्धि होने प्राप्ति कैसे होगी? ऐसे मैंने सुना ऐसे मैंने पढ़ा ऐसे मैंने समझा, पर फिर सत्संग के द्वारा बात समझ में आई कि अंतःकरण की शुद्धि से संसार के कार्य ठीक हो गए, परमात्मा की प्राप्ति में अंतःकरण शुद्ध हो अशुद्ध क्या मतलब हुआ उसमें? बिल्कुल ऐसा की बात है। कारक जितने हैं सब प्रकृति का कार्य है, तो प्रकृति से अतीत कर्तृत्व भी नहीं है तो कर्ण कैसे रह जाएगा? आप बताओ, अच्छे पढ़ी पढ़ो विद्वान पढ़ो बताओ। प्रकृति से अतीत तत्व में कर्तृत्व भी नहीं है, जो कर्तापन है संपूर्ण कारकों में मुख्य है, स्वतंत्र कर्ता क्रियायाम स्वातंत्र विविधता कर्ता, क्रिया में जो स्वतंत्र होता है सर्वथा उसका नाम कर्ता होता है। तो परमात्मा तत्व में कर्तृत्व भी नहीं है, प्रकरण कैसे रहेगा आप बताओ? हमारी बात सुन बोला ही नहीं, तो पूछना पड़ी जगह माई है क्या है विचार सागर में विचार सुन दो है
सूत्र पर अखंडानंद जी महाराज ने टीका की है उसमें ये बात आई
उस बात विचार सभी विचार है ही बात है। अब पढ़े गई तो मैं पता गई तुम पढ़े पढ़े कोई बात आवेगी हमें उस ब्रह्म है ही नहीं आवे कहाँ से है ही नहीं बात जी तो बोला बाबा ने कहा है तो यही बात आ जाए परंतु अब पढ़ाई के ग्रंथ खास वेदांत के खास ग्रंथ उनमें भी ये बात नहीं है तो बेचारा पढ़ने वाला कैसे समझे कार्य सबके सब प्रकृति के कार्य है ये बात साफ ऐसी लिखी हुई कहीं देखी हो तो आप बता दो नहीं किस पर देखी ऐसी कि पढ़ने ये तो हो जाता करते बाबा मिट जाता है करते मन नहीं जाता करते हैं ये सब कहते हैं जितने पढ़े हुए सब कहते हैं तो करते जो अभिमान नहीं रहता तो कर्ण कैसे रहेगा फिर कर्ण की शुद्धि अशुद्धि क्या मतलब हुआ ये सोच ही नहीं सकते जितनी जाती ही नहीं है कहते रहते करते तो नहीं है करते तो नहीं बोल देंगे मैं कर्ण शुद्ध होने से होगा अंधकर्ण शुद्ध होने से होगा अब दोनों बोलते रहते हैं पता है ही नहीं क्या बोलते हैं आप ध्यान देंगे नहीं करते तो रहित तो मानते हैं और कर्ण अंतरण शुद्ध होने से सिद्धि होगी अंतरण शुद्धि नहीं होगी फिर कर्तृत्व नहीं है तो कर्ण की शुद्धि अशुद्धि क्या बदला है वहां ये प्रश्न ही पैदा नहीं होता कैसे मैं ग्रंथ में ही नहीं ये बात होती नहीं कर्तृत्व है तो जाता है कि नहीं ये तो पहले ही जाता है पर अंतरण शुद्धि से होगी इससे सिद्ध हुआ कर्तृत्व नहीं है कारण है तो शुद्धि अशुद्धि क्या मतलब है पढ़ने वाले जल्दी विचार सकते नहीं वो तो जो पढ़ाए जो सीखेंगे ना वो सीखेंगे क्या विचार करेंगे कर नहीं सकते विचार गहरा करेंगे वो समझेंगे ये क्या बात है ये बात है। तो वास्तव में कार्य सबके सब प्रकृति का कार्य है ये बात मेरे बहुत वर्षों के बाद समझ में आई है मेरे आप जटे नहीं जटे आप जानो तो कार्य सबके सब कार्य है जो प्रकृति में क्यों है अब आपको बात बताऊ आपको तो कर्तृत्व अभिमान नहीं है तो कर्तापन कहाँ रहता है प्रकृति का कार्य है कर्ता तो सबके सब जितने कारक हैं सबके सब प्रकृति का कार्य है कर्ता कर्म कारण संप्रदान आप बताओ कारक की संज्ञा क्या कारक का लक्षण क्या है किसको कार्य कर रहे हैं क्रियाजन कर तुम कार्य करता हूँ क्रिया का जनक वो कारक होता है अरे क्रिया नहीं है तत्व में तो क्रिया जनक का नाम कारक है क्रिया पैदा करने वाला नाम कारक है कारक छह है उगता नुतया नीला कारक अनुभव छह होते हैं ये क्रिया की सिद्धि में होते हैं अरे तत्व क्रिया से अतीत आप सब परिचित पढ़ा हुआ आप जानते हो तत्व क्रिया से अतीत है और अंतर्गण शुद्धि होगा कैसी बात कर रहे हैं अगर निषेध ग्रम छोड़ते नहीं वे मुक्ति चाहते ही नहीं जो आदमी निषिद्ध ग्रम नहीं छोड़ता वो कल्याण चाहता ही नहीं वो तो नरक में जाएगा वो चाहता ही नहीं कल्याण चाहेगा वो निषिद्ध कैसे करेगा विहित निषिद्ध में सबसे पहले विहित काम करेगा निषिद्ध नहीं करेगा पहले आरंभ में ही सीखने से ये बात है ये कोई पढ़ाई करके तोते की तरह सीखने उनकी बात है क्या निषिद्ध क्या भेद उनके तो अपना सुख लेना है मजा लेना है नारायण 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 देखो क्रिया जनकत्व कारकत्व ये सिद्धांत समझना चाहिए जो क्रिया का जनक होता है कारक होता है षष्ठी कारक नहीं होता क्यों नहीं होता क्रियाजनकत्व नहीं है उसमें